ओम शांति। आदरणीय भ्राता मोहन भाई जी हमारे बीच आ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। आप बाबा के बहुत पुराने अनमोल रत्न हैं। 1962 में यंग एज में आप बाबा के बने और 63 में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, या यूं कह सकती हूं 1967 वो साल ऐसा था जब आपने इंजीनियरिंग पास आउट किया। आपने ONGC में भी कार्य किया हुआ है, बिहार, असम, गुजरात, उत्तराखंड आदि में आपने अपने यंग एज में ही कई सेवा स्थान खोल दिए थे। बाबा का बनने के बाद इस कार्य में, भगीरथ कार्य में आप साथ साथ लग गए और साथ साथ आपने पर्यावरण और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में, आज तो दुनिया में चारों तरफ आपदाएं हैं, तो आपने उस क्षेत्र में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कई प्राप्त किए हुए हैं गवर्नमेंट से। साथ ही साथ साइंटिस्ट एंड इंजीनियर विंग के आप वाइस चेयरपर्सन हैं। ब्रह्मा कुमारीज की जो मैनेजमेंट कमेटी है उसके भी आप सदस्य हैं। हमारे यहाँ का RERF राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की गवर्निंग काउंसिल के भी आप सदस्य हैं। उससे भी ज्यादा बढ़कर बात तो ये है कि आपने साकार बाबा की पालना बहुत ली है। आप सोच सकते हैं 62 में ज्ञान में आए तो बाबा ने तो शरीर 69 में त्याग किया था, तो आपने काफी करीब से बाबा की पालना ली है। और बाबा साकार बाबा की जो अंतिम दो दिन रहे वो कर्मातीत अवस्था को कैसे प्राप्त किया, वो लास्ट के दो दिन बाबा के साथ साथ ही आपने व्यतीत किए हैं। तो अब हमारे बीच है, हमें भी अपने अनुभवों के माध्यम से आप बहुत सी प्रेरणाएं देंगे आज के विषय पर। मोहन भाई जी,
ओम शांति। एक बार हम सभी मिलकर के उस रीति से ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे जैसा कि हम सब ने सुना है यज्ञ के इतिहास में, कि यज्ञ के आदि में सब ब्राह्मण वत्स और बाबा मामा सब मिल करके बोला करते थे। अंदर हम गहरी श्वास लेंगे एक, और उस श्वास को निकालते हुए ओम की ध्वनि करेंगे, और फिर दूसरी गहरी श्वास लेकर उसे निकालते हुए शांति की ध्वनि करेंगे। शांति की ध्वनि ही है जो कि जिससे यज्ञ की आदि स्थापना भी हुई और अंत तक भी यही ध्वनि हमें मार्ग प्रदर्शना करती रहेगी। आज की सारी मुरली तो आज के विषय पर ही, जैसे आप सबने सुना ही था। क्या विषय है आज का? मन जीते जगत जीत। और आज की मुरली भी सारी काफी हद तक संकल्प के ऊपर, मन के ऊपर कैसे नवीनता हो। बाबा ने वरदान भी और सौगात भी दिए। कितनी सौगात दी बाबा ने आज? बाबा ने शुरू में ही 3 सौगात दी। हाँ, कौन सी? बाप समान, बाप का साथ और रूहानी नशा, दिल तख्त नशीन। तो ये बाबा ने आज के लिए हम बच्चों को सौगात दी, खाली आज के लिए नहीं बल्कि पूरे नए वर्ष के लिए। और हम लोग क्या कहेंगे? वो मुरली तो नए वर्ष के उपलक्ष्य में चली थी 84 दिसंबर की, लेकिन भट्टी में जो आए हैं, भट्टी कर रहे हैं, हम सबके लिए ये एक नए जीवन के लिए जो सौगात है बाबा की, बाबा का वरदान है। भट्टी में भी तो नया जन्म होता है ना, वो तो एक नया वर्ष होता है। और हम सबका जो भट्टी है वो क्या है? नया जन्म। वैसे भी दुनिया में भी कहते हैं कभी कोई अगर डिफिकल्ट फेज से पास होकर के निकलता है तो कहता है जैसे ये तो मेरा नया जन्म है। तो भले ज्ञान में हम सभी यहाँ पर जो बैठे हैं अलग अलग समय से हैं, काफी समय निकाल भी दिया होगा, फिर भी आज से या अब से जब से ये भट्टी में आप आए हैं और 2-3 दिन रहेंगे, बिल्कुल ऐसा ही बाबा का वरदान लेकर के जाए जो आज बाबा ने मुरली में मार्ग प्रदर्शना की है। हमें याद है कि जब पहले भट्टियां हुआ करती थी 69 में जब बाबा अव्यक्त हुए तो तब हम सब लोगों की भट्टी होती थी लगभग 15 दिन की, और उसमें पहले दिन बाबा आते थे अव्यक्त बाप दादा, तो वो मुरली जो होती थी बाबा की वो गाइडलाइंस की मुरली होती थी कि इस भट्टी में क्या क्या पुरुषार्थ करना है, क्या लक्ष्य रखना है और कैसे अपने अंदर परिवर्तन लाना है। फिर एक बार बाबा बीच में आते थे लगभग 1 हफ्ते बाद, और उसमें बाबा जो मुरली की या जो पुरुषार्थ की बच्चों की प्रोग्रेस होती थी उसको रिव्यू करते थे कि हाँ कैसा पुरुषार्थ किया है, अभी और क्या करना है, भट्टी समाप्ति से पहले ये लक्ष्य रख के इसको इतना पूरा करना है। और फिर अंत में फिर बाबा फर्स्ट सेकंड थर्ड डिक्लेयर भी करते थे। शुरू की 4-5 हम लोगों की भट्टियां याद है हमें, तो शुरू की कम से कम 4 भट्टियां जो हुई थी उनमें तो बाबा ने हर भट्टी में नाम भी सबके डिक्लेयर किए थे, कौन इस भट्टी में फर्स्ट है, कौन फर्स्ट का ही ज्यादातर नाम ही डिक्लेयर करते थे। तो इस रीति से भट्टियां जो चलती थी, तो आज की भट्टी आपकी भी प्रैक्टिकली, भले कल ही आए है ना आप लोग, कल से, तो ये देखो कितना लक है कि आज की मुरली में भी पूरी की पूरी गाइडलाइंस है और आज का विषय भी वही है संकल्पों के ऊपर। अब भारतीय संस्कृति जो है अगर देखा जाए तो पूरी हमारी आध्यात्मिक संस्कृति संकल्पों के ऊपर ही आधारित है। भारतीय संस्कृति ने विश्व को कुछ सिद्धांत दिए हैं, हम भारतवासी ही काफी भूल गए हैं, लेकिन वो 3-4 सिद्धांतों के आधार पर ही पूरी दुनिया का सारा कार्यकलाप चलता है। तो वो मुख्य जो 4 सिद्धांत हैं वो आज के विषय के भी बहुत अनुरूप हैं। एक सिद्धांत उसमें है जिस जो कि आज का विषय ही है, मन जीते जगत जीत। पूरी भारतीय संस्कृति मन के ऊपर है, जबकि विश्व की सारी संस्कृतियां शरीरों के ऊपर, कैसा ड्रेस हो, कैसा चाल चलन हो, किस प्रकार से व्यवहार, और यहाँ भारतीय संस्कृति पूरा आंतरिक ड्रेसअप के ऊपर है। मन के ऊपर, इसीलिए मन के लिए बहुत कुछ कहा है। दूसरा, भारतीय संस्कृति ने एक सिद्धांत दिया है, कौन कौन से दिए हैं आप लोग भी, हम अक्सर करके हम लोग आपस में कहते रहते हैं लेकिन पर्टिकुलरली उन शब्दों में नहीं। एक है जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। एक तीसरा सिद्धांत जो भारतीय संस्कृति ने दिया है वो कौन सा है, बहुत अच्छा, कि ये जो प्रकृति है ना, पांच तत्व बाहर की और एक हमारी आंतरिक प्रकृति है, तो बाहरी प्रकृति आंतरिक प्रवृत्ति का ही, प्रवृत्ति नहीं प्रकृति का ही रिफ्लेक्शन है। आउटर नेचर इज द मिरर इमेज ऑफ अवर इंटरनल नेचर, जो बाबा भी प्रकृति का बताते हैं, एक हमारी आंतरिक, इन सब के ऊपर थोड़ा थोड़ा हम आपस में आज चिंतन करेंगे। और एक चौथा सिद्धांत दिया है वसुधैव कुटुंबकम का, ये हमारी भारतीय संस्कृति के मुख्य चार सिद्धांत हैं। जियो और जीने दो, मन जीते जगत जीत, वसुधैव कुटुंबकम और प्रकृति, बाहरी प्रकृति हमारी आंतरिक प्रकृति का रिफ्लेक्शन है। तो इस रीति से अगर देखा जाए, हमारा ज्ञान जो है इन चार सिद्धांतों पर ही पूरा का पूरा रोटेट होता रहता है। पूरा ज्ञान का कोई भी पहलू ले लें हम, ज्ञान योग धारणा सेवा, वो इन सब सिद्धांतों के ऊपर। और ये मन जीते जगत जीत का तो सिद्धांत बहुत प्रसिद्ध है, मन के ऊपर तो और भी बहुत कुछ कहा है। क्या क्या कहा है, अक्सर करके हम लोग कहते भी आपस में, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन के हारे हार है मन के जीते जीत, और क्या मन के लिए बोलते हैं, मन, अच्छा कौन सी हिंदी भाषा ही है, गुजराती है, हाँ खैर गुजराती तो हम जानते हैं, बहुत मतलब। तो इसके पीछे भावार्थ क्या है एक्चुअली, और कोई भी चीज होती है अगर लिविंग एग्जाम्पल से बताई जाती है तो वो सहज समझ जाते हैं। तो मैं यहाँ पर चूंकि साकार बाबा के साथ रहा तो इस मन जीते जगत जीत पर बाबा ने कैसे मन को जीता और मन जीत लिया है उसके सिम्टम्स क्या, देखने में कैसे लगेगा, हम कहे मैंने जीत लिया लेकिन दिखना चाहिए, दूसरे को पता चलना चाहिए। तो साकार बाबा के साथ ना जब हम लोग 62-63 वगैरह में मिलते थे, जब आए बाबा बहुत एक एक बच्चे को काफी समय देते थे, अक्सर करके बाबा मिलते थे, आओ बच्चे आओ मीठे बच्चे, ऐसे हाथ फैला दिया करते थे बाबा, बाहर चित्र भी है ना आपने देखा होगा, और बस, और इसमें ऐसी मैग्नेटिक पावर होती थी कि कोई भी हो, बच्चा हो बूढ़ा हो जवान हो स्त्री पुरुष हो कोई भी, बस तुरंत एकदम, क्योंकि ये शारीरिक भले पोस्चर ये होता था लेकिन इट वॉज ए कम्युनिकेशन बिटवीन सोल एंड अदर सोल। तो उससे क्या होता था कि बस खींचते चले आते थे, और ब्यूटी क्या होती थी उसमें कि जैसे चुंबक होता है, अगर लोहे पर रगड़ो तो टेम्परेरी उसे भी चुंबक बना देता है। तो बस बाबा के सानिध्य में आए और तुरंत ही विदेही हो जाते थे अशरीरी। अभी तो अशरीरी होने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, देवान को भूलना पड़ता है, लेकिन उस समय जैसे एकदम अशरीरी हो जाते थे। तो थोड़े समय तक वो अशरीरी पने का आनंद लेते थे, भले ये टर्मिनोलॉजी नहीं थी विदेही या अशरीरी बनने का वगैरह, लेकिन देवान से भूल, और वो पता कैसे चलता था कि थोड़ी देर के बाद बाबा ऐसे थप थप, हाँ बच्चे आओ 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 वापस आओ आओ, कोई आत्मा जाती नहीं थी लेकिन कॉन्शियसनेस जैसे विड्रॉ हो जाती थी, चेतना शरीर भान से बिल्कुल विलुप्त हो जाती थी, और उसके बाद आने को दिल तो नहीं करता था लेकिन जैसे फिर देव में आए, फिर बाबा हालचाल पूछते थे, टोली खिलाते थे, नाम वगैरह पूछा, एक जाता था दूसरा आता था, एक एक करके मिला करते थे। तो भाव क्या है, चूंकि बाबा का पुरुषार्थ ये धीरे धीरे, आप सबने भी पढ़ा होगा ना कि बाबा ने कैसे मन के लिए, क्योंकि शुरू में बाबा का भी मन भागता था भाई। ये 1936-37 में बाबा ने देखा, ज्ञान भी हुआ, बाबा को साक्षात्कार भी हुए और जीवन परिवर्तन हुआ, लेकिन बाबा ने देखा कि मन अभी भी मेरा भागता है, क्योंकि वो भी प्रवृत्ति में थे, हीरे जवाहरात के व्यापारी थे और पूरा भरा पूरा परिवार था, बच्चे पोते वगैरह सब थे, तो मन का भावना स्वाभाविक है। तो उस मन को रोकने के लिए बाबा ने क्या किया, अब सब तो काफी पुराने भी बैठे हैं, क्या किया बाबा ने मन को रोकने के लिए, आत्मिक स्मृति, वेरी गुड, और स्थूल रीति से और भी कोई, हाँ बाबा नहीं, दीवालों पर भी बाबा ने, वो तो आत्मिक स्थिति के लिए कि मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, ऐसे लिख लिख के बाबा ने वो तो पक्का किया, कोशिश करी काफी हाँ कि भाई ऐसे हो, हरेक को आत्मिक स्मृति से देखें। और उसका प्रमाण यही है कि जिसने ये पक्का किया होगा कि मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, तो जैसे ही वो दूसरे को देखेगा ना, तो दूसरा भी देह भान से परे हो जाएगा, वो भी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएगा। अभी अगर आप देखो, जैसी दृष्टि वृत्ति होती है वैसे ही दूसरे को तुरंत आभास होता है। तो इसीलिए बाबा ने जब ये अनुभव किया कि अभी भी बुद्धि भागती है, तो बाबा ने मन को लेटर लिखा, पत्र लिखा। उस पत्र की कॉपी हम लोगों को दी गई थी, अभी तो यहाँ नहीं है, और आनंद किशोर दादा एक होते थे, उन्होंने उसकी कॉपी निकाल, बड़ा विचित्र पत्र था। क्या लिखा था बाबा ने पत्र में, मन को, जैसे कि बाबा ने कहा था, हे मन, मैं आत्मा राजा हूं और तू मेरा कार्यकर्ता है, तू मेरा मंत्री है, तुझे मेरे कहने पर चलना चाहिए, लेकिन हे मन, तू ज्यादा बलशाली हो गया और तूने मुझ आत्मा राजा को कमजोर कर दिया, और तू जिधर जिधर जाता रहा मैं भी तेरे पीछे पीछे भागता रहा, तूने मुझे बहुत नाच नचाया। भक्ति में भी कहते हैं ना, मन बड़ा चंचल है, क्या करे, भाग जाता है, वास्तविकता भी यही है। तो बाबा ने भी वही अनुभव किया, और उसके बाद फिर बाबा ने नेक्स्ट पैरा में, दूसरे पैरे में लिखा कि लेकिन हे मन, अब मैं तुझे कह देता हूं कि मैं राजा अपनी स्थिति में स्थित हो गया हूं, अब मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा, तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मैं राजा हूं, तू मंत्री है, तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा। तो इस तरह बाबा ने पत्र लिख करके मन को बताया, जगाया, चेताया कि अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मैं अपनी स्वस्थिति में स्थित हो रहा हूं। तो होता क्या है, हम भी चाहते हैं, जितने बैठे हैं तभी तो यहां आए हैं, कि मन हमारे वश में रहे, मन भागे नहीं, चंचल है, भाग जाता है अक्सर करके, ये हम सब लोग कहते हैं, लेकिन न भागे। तो उसके लिए बाबा ने ये एक हिंट दे दिया कि मैं अपनी स्वस्थिति में स्थित हो गया। तो हम भी चाहते ये हैं, लेकिन फिर भी मन भाग जाता है, चंचल है, क्यों, क्योंकि हम मन को जब ऑर्डर करते हैं तब अपनी सीट पर सेट नहीं होते, स्थिति में स्थित नहीं होते, बिना स्थिति में स्थित हुए हम मन को ऑर्डर कर देते हैं तो मन मानता नहीं। लौकिक रीति से भी अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, बड़ा है या मिनिस्टर है, अगर जब तक सीट पर है सब उसकी बात मानते हैं, और जब वो रिटायर हो गया या ट्रांसफर हो गया, या मिनिस्टर लोग इलेक्शन में कोई हार गए, पावर में नहीं रहे, तो कोई भी उसकी बात नहीं मानता, पावर में ही नहीं है। तो ऐसे ही हम भी मन को ऑर्डर करते हैं लेकिन मन मानता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम पहले अपने स्वमान में स्थित नहीं होते। तो एक तो ये इंडिकेशन बाबा ने पत्र से दिया कि भाई अभी पहले स्वमान में स्थित हो, उसके बाद किसी भी शक्ति का आवाहन करेंगे वो शक्ति आपके पास दौड़ती दौड़ती आएगी। लेकिन बिना स्वमान में स्थित हुए किसी गुण शक्ति का आवाहन करने से भी वो हमारी पावर में नहीं रहेगी। तो पहले तो बाबा ये करा करते थे, बच्चों से मिलते थे और थोड़ा सा अनुभव करा देते थे, उसके बाद बस वो बाबा के बन जाते थे बच्चे। तो आज भी बाबा ने मुरली में बोला ना, हमारे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस आज बाबा ने शरीर में किस अंग को दी? नयन को। ये नयन है जो आपको लाइट का साक्षात्कार आपके द्वारा कराएंगे। बाबा का साक्षात्कार नयनों के द्वारा ही होगा। लाइट का भी अर्थ बाबा ने बताया। और ये जो है अब हम बच्चों को यही नवीनता करनी है जो आज बाबा ने बताया। मुरली में आज काफी कुछ वो था। तो शुरू में बाबा थोड़ा देर का अनुभव करा के फिर बच्चों को छोड़ देते थे। बीच में जब मिडिल पीरियड हमने देखा, लगभग 65-66 का पीरियड, तो उसमें हमने देखा कि बाबा बहुत समेटते जा रहे थे। पहले बाबा बच्चों के साथ ज्यादातर करके बैडमिंटन भी, जो ये कोर्ट है, खेला करते थे, बहुत घुमाने भी ले जाते थे, सब कुछ। लेकिन धीरे 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 बाबा सब समेटते जा रहे थे। अब वो पता चलता था इससे कि जब पार्टी वाले आते थे, कोई मिलते थे बाबा से, तो बाबा को कहते थे कि कुछ भी बताते थे तो दो लाइन बोली, बस बाबा कहते थे बच्चे बाबा समझ गया। अरे बाबा अभी तो हमने बोलना शुरू ही किया है, एक दो ही लाइन बोली है। तो बाबा कहते नहीं नहीं बच्चे, और बाबा समझ के उत्तर दे देते थे। मतलब वो कन्वर्सेशन, वो बातचीत बाबा बहुत छोटी कम समय में, पहले एक एक को 10 मिनट भी 5 मिनट भी देते थे, बाद में तो 30 सेकंड या 1 मिनट में ही पूरा कर देते। और अंतिम 2 दिन में हमने क्या देखा, 17 जनवरी की सुबह हम यहाँ आ गए थे, उस समय इंजीनियरिंग पास करके हम आसाम में पोस्टेड थे, ONGC में। तो आसाम में पोस्टेड थे तो वहां से बस बाबा ने जैसे बुला लिया और बाबा के इशारे पर आए, और 17 और 18 जनवरी को बाबा की संपूर्ण कर्मातीत अवस्था देखने का मौका मिला। और उसमें क्या देखा कि जब भी बाबा के पास जाते थे, बाबा को ये पूछेंगे, ये बताएंगे, बस गए, बाबा ने जरा सी दृष्टि देखी दी, बाबा कहते थे बच्चे अच्छा ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा, बस ये पूछने। मतलब मन का भाव, हमें एक अक्षर भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और ये है स्थिति मन जीते जगत जीत की, क्योंकि बाबा ने अपने संकल्पों के ऊपर इतनी विजय प्राप्त कर ली थी कि दूसरे के संकल्प को तुरंत ही रीड कर लेते थे, एक अक्षर भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो ये एक तो ये अनुभव किया। अंतिम 2 दिन में लगभग 6-7 बार बाबा से मिले होंगे कि अब बाबा को सेवा का समाचार सुनाएंगे, अब ये पर्सनल पुरुषार्थ की बात सुनाएंगे, अब हमें क्या क्या और डिफिकल्टी है या क्या बात। लेकिन बस जो भी सोच कर जाते थे बाबा, पहले तो वो बता देते अच्छा ये पूछने आए हो, उसके बाद उसका समाधान कर देते थे। तो मन जीते जगत जीत की एक तो ये, जिसने अपने मन में अगर थोड़े भी संकल्प होंगे वो दूसरे के मन के भावों को कभी नहीं पढ़ सकता। और ये बहुत बहुत आवश्यक है, क्योंकि अंत समय में जब लोग आएंगे, हमें भी अंतिम दिन का ये अनुभव है, मुरली सुन रहे थे हिस्ट्री हॉल में 18 जनवरी की रात को। तो 18 जनवरी की रात को सामने बैठे हुए मुरली सुनते सुनते हमारे मन में एक विचार आया कि भाई क्या ही अच्छा हो बाबा कुछ हमारे लिए कोई और कुछ बोले और हमारे लिए गाइडलाइन भी हो जाए आगे। और बस मन में विचार आया और जैसे बाबा की तो कर्मातीत अवस्था थी बिल्कुल, तो बस बाबा तक वही संकल्प पहुंचा होगा। और कहते हैं ना भक्तों का, भक्ति मार्ग में बोलते हैं भक्तों के संकल्प भगवान तक पहुंचते हैं और भगवान बस दर्शन देके क्या करते हैं, क्या कहते हैं, तथास्तु, और फिर अंतर ध्यान हो गए, भक्त की इच्छा भी पूरी हो गई और बात पूरी हुई। तो ऐसे ही जैसे ही संकल्प उठा तुरंत ही बाबा ने नाम लेके 18 जनवरी की अंतिम रात्रि क्लास है वो, उसमें सुनेंगे, इधर भी कैसेट मिलती है, तो उसमें बाबा ने बस नाम लेके कुछ महावाक्य बहुत अच्छे अच्छे उच्चार दिए। भाव क्या है कहने का कि जो मन जीते जगत जीत आत्मा बन गई होगी उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, जो भी व्यक्ति आएगा अपनी इच्छा लेके बात लेके उसकी बात को तुरंत समझ जाएंगे और उनकी मनोकामना को पूर्ण कर देंगे। यही तो चाहिए, हम भी तो जो हमारे सामने ब्रह्मा बाबा थे, अब दुनिया के सामने आने वाले और मनुष्यों के सामने, हम सभी तो उनके सामने ब्रह्मा बाबा और ममा के स्वरूप हैं। हमारे सम्मुख वो अनेक इच्छाएं लेके आएंगे और अगर उनकी इच्छाओं को हम पूर्ण नहीं कर सके तो बाबा का नाम तो इससे बाला नहीं होगा। तो उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए उनके मनोभावों को पढ़ना बहुत जरूरी है, एक्यूरेट। अब वो तब होगा जब हमने अपने मन के भावों को पूर्णतः नियंत्रित किया होगा, मन के संकल्पों पर विजय प्राप्त की होगी। तो एक तो ये हमने बाबा का पूरा अनुभव किया। और क्या इसके साथ साथ मन में संकल्प जो चलते हैं, आज ये है ना मन जीते जगत जीत, तो हम संसार में रहते हैं तो मन जीतने का भाव और क्या है। मन में व्यर्थ संकल्प अक्सर अभी भी कहते हैं, हमें याद है कुछ वर्ष पहले तक जब गुलजार दादी यहाँ पर थे तो दादी क्लास कराते थे, तो एक क्लास में दादी ने कहा कि आज बाबा ने बच्चों को एक सर्टिफिकेट दिया और एक सर्टिफिकेट की बाबा एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों से। तो क्या सर्टिफिकेट दिया बाबा ने कि एक बच्चों को बाबा ये सर्टिफिकेट तो देता है कि अब बच्चों के मन में विकारी संकल्प तो पैदा नहीं होते, विकारों के ऊपर तो मोटे रीति से बच्चों ने विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं अभी भी बच्चों के। और इसीलिए बाबा जहां एक तरफ सर्टिफिकेट दे रहा है कि विकारी संकल्प नहीं है, वहां ये भी चेतावनी दे रहा है अगर ये व्यर्थ संकल्पों को कंट्रोल नहीं किया तो ये ही आगे आने वाले समय में बच्चों के पुरुषार्थ में रुकावट डालने का कारण बन सकते हैं। तो इन व्यर्थ संकल्पों को, जो भी व्यर्थ संकल्प आए उन पर बहुत जल्दी बच्चों को अब विजय प्राप्त करनी है। तो व्यर्थ संकल्प आने के कई कारण होते हैं, एक कारण उनमें जो मुख्य होता है वो होता है जहां भी जिस वातावरण में हम काम करते हैं, व्यक्तियों के साथ, परिवार में रहते हैं, परिवार के साथ, ऑफिस वालों के साथ, दुकान में, कहीं भी बिजनेस में, जिसके साथ भी रहते हैं, मनुष्य की एक जनरल इच्छा है कि वो हर व्यक्ति को ना अपनी इच्छा से चलाना चाहता है कि बस मैंने जो कहा दूसरा भी उसे माने, उस बात को स्वीकृति दे, एक स्वाभाविक स्वभाव जैसा है। तो इस कारण से क्या होता है, और जब वो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है मनुष्य की तो उसके बहुत व्यर्थ संकल्प चलते हैं। इसीलिए भारतीय संस्कृति का जो दूसरा सिद्धांत है ना, जियो और जीने दो, वो इसी के लिए, परिवार में रहने वालों के लिए। क्यों भाई, परिवार में क्या होता है भाई, सास बहू को इच्छा से चलानी चाहती है, बाप बेटे को चलाता है, भाई भाई को, जो भी है बड़ा छोटे को, सब एक दूसरे को अपनी इच्छा के अनुकूल चलाना चाहते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, ये सिद्धांत जो भारतीय संस्कृति ने दिया है, जियो और जियो, लिव एंड लेट लिव, ये बहुत बहुत अच्छा सिद्धांत है कि आपको कुछ डायरेक्शन देनी है, दिया, बस खुद भी जियो दूसरे को जीने दो, जिस इच्छा से भी वो चलता है। हाँ, सावधानी देना हमारा कर्तव्य है। जबकि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनका सिद्धांत क्या इसके विपरीत है, कौन सा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो शक्तिशाली है उसे जीने का अधिकार है, बस कमजोर को जीने का अधिकार नहीं है। जो जंगल का रूल है, जंगल में ज्यादा शक्तिशाली शेर है मानो, वो उसे जीने का अधिकार है। एक बड़ा जानवर छोटे जानवर को खा जाएगा, उससे बड़ा जो है वो दूसरे को, और लास्ट में जो शक्तिशाली है वो ही जंगल में रहेंगे। तो ये सिद्धांत को भी हम जितना जीवन में चला के रखेंगे, मन जीते जगत जीत के साथ जियो और जीने दो, तो उसमें हमारे व्यर्थ संकल्पों के ऊपर बहुत अंकुश लग जाएगा। हम दूसरे को अपनी इच्छा, जब जानते हैं वैरायटी ड्रामा है, हर आत्मा का अलग अलग संस्कार है, हर एक का पार्ट है अपना अपना चला रहे हैं, तो फिर बस अगर कोई हमारी बात नहीं भी मानता है अपनी इच्छा से, तो हमारे व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। एक ये है। और जहां तक इसकी भी बात है, और अभी की मेन जो है, अभी हमें ये समझ लेना चाहिए, बाबा ने भी प्रकृति शब्द है ना, प्रकृति शब्द के भी दो अर्थ बताए हैं। क्या दो अर्थ हैं प्रकृति शब्द के, नेचर है? एक है ये बाहर के पांच तत्व, और एक है ह्यूमन नेचर, हमारा स्वभाव। हम कहते हैं मेरे नेचर ही ऐसी है, क्या करूं, तेज बोलने की नेचर है या ये नेचर, जो भी संस्कार आत्मा का हो जाता है, आदत हो जाती है, उसे हम अपनी नेचर बदल देते हैं। लेकिन ये बाबा ने बताया है, अभी कोई को भी ब्लेम करने का नहीं है, इसका ऐसा स्वभाव क्यों है, क्यों ऐसा संस्कार है, ये ऐसा क्यों करती है, नहीं, क्योंकि जो बाहरी प्रकृति है, बाहरी में पांच तत्व भी आ जाते हैं और ये शरीर भी आ जाता है, ये भी तो बाहरी है, आत्मा हमारी उसकी प्रकृति, तो जो हमारी आत्मा की प्रकृति है, नेचर है, बाहर की प्रकृति भी उसी का रिफ्लेक्शन है, मिरर इमेज है। जब हम आत्मा है, बड़ा सिंपल है, सतयुग त्रेता में हम सतो प्रधान है, बाहर की प्रकृति भी सतो प्रधान है, कोई अर्थक्वेक नहीं आता, कोई फ्लड नहीं, कोई सुनामी नहीं, कोई लाइटनिंग नहीं, कोई क्लाउड बर्स्ट नहीं, कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि बाहरी प्रकृति हमारी आंतरिक रीति से हम सतो प्रधान है, शक्तिशाली है, तो बाहर की प्रकृति भी ऐसी है सतो प्रधान। और द्वापर युग से जब आत्मा विकारी बनती है, कमजोर होती है, तो बाहर की प्रकृति भी वैसा ही बिहेव करती है। तो जब एक बार जान जाते हैं कि ये समय का प्रभाव है, तो किसी आत्मा पर दोष देने की बात ही नहीं रहती। जो पुराने उन्हें याद होगा ना, जब मनमोहनी दीदी जी ने शरीर छोड़ा, बड़ी दीदी जी ने, तो बाबा ने क्या कहा था, कईयों के मन में आता था भाई बड़ी दीदी इतना, उनका ये इलाज होना चाहिए था, ये करना था, तो बाबा ने क्या बोला, न भगवान का दोष न भगवती का दोष, बस कोई दोष नहीं किसी का। भगवती डॉक्टर का नाम था, उसने ऑपरेशन किया था, लेकिन वैसे सब ऑपरेशन सक्सेसफुल भी हो गया, लेकिन बाद में कुछ इन्फेक्शन वगैरह हुआ और अल्टीमेटली शरीर छोड़ दिया। तो किसी का भी, किसी पर भी हम दोषारोपण नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है, हमारा बचपन से इंडियन माइंड ट्यून ही ऐसा है कि दूसरों को दोष देने का, बचपन से। देखो आप सब माताएं भी बैठे हो ना, घर में जब छोटा बच्चा जन्म लेता है सब बड़ा खुश होते हैं, और थोड़ा बड़ा हुआ बस उसको देख के बोलना शुरू करता है और खुश हुए, जब थोड़ा सा चलना शुरू करता है, पहले तो दो हाथ दो पैर से, फिर जब और बड़ा होता है दो पैर से दौड़ता है, तो बस माँ बाप देख के और प्रसन्न होते हैं, देखो चलना सीख रहा है, कैसे चल रहा है, और अगर चलते चलते गिर जाता है, रोने लगता है, तो माताएं क्या करती है, धरती पर ऐसे मार के बताते हैं, भाई तेरा दोष नहीं, ये धरती ने तुझे चोट पहुंचाई, इसका दोष है। तो वहीं से ही हमने उसका प्रोग्रामिंग कर दिया, कि यू आर नेवर रॉन्ग, तुम कभी भी गलत नहीं हो, गलत हमेशा दूसरा है। बस इसीलिए ये दो जो प्रोग्रामिंग माइंड की हो गई ना, ये जीवन भर चलती है। और हम लोग यही कहते हैं, दादियां भी कई बार उदाहरण दे कहते हैं, भाई उसने तुमने गुस्सा क्यों किया? दादी उसने ऐसा बोला तो मुझे गुस्सा आ गया, उसने झूठ बोला, भाई उसने तो बोला ही लेकिन तुमने भी तो उसका क्रोध करके कोई सही बात थोड़ी करी। तो भाव क्या है कहने का कि माइंड की इन जनरल इस कलयुग के अंत में सबकी प्रोग्रामिंग ही यही है ब्लेम गेम की, एक दूसरे को दोषारोपण करने की, इस कारण से वो होता है। अब इसी संस्कार को हम लोगों को बदलना है। तो इससे क्या होगा, अपने आप ही संकल्पों के ऊपर हमारा नियंत्रण होता जाएगा। और पहचाने कैसे कि हमारा संकल्पों पर नियंत्रण होता जा रहा है? तो मन का काम है संकल्प करना। तो संकल्प को मतलब उसके तीन मतलब ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि हमारा संकल्प हमारे नियंत्रण में होता जा रहा है, हमारे मन के ऊपर विजय होती जा रही है। पहली चीज क्वांटिटी ऑफ थॉट्स, विचारों की संख्या। अक्सर करके जब अच्छा वातावरण है, यहाँ आप सब बैठे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, मधुबन का वातावरण भी इतना शक्तिशाली है, ठीक है, लेकिन अभी बैठे बैठे ही सडनली अगर आपके फोन पर मैसेज आ जाए, कोई आपका नियर एंड डियर है, बहुत प्रियजन है, संबंधी है, क्लोज है, उसका एक्सीडेंट हो गया, बहुत सीरियस है, कुछ भी हो सकता है, एकदम आपके पास न्यूज आई, बस संकल्प बहुत ज्यादा चलने लगेंगे, संख्या बहुत बढ़ जाएगी। नॉर्मल केस में ऐसा साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि नॉर्मल केस में 25,000-30,000-35,000 संकल्प की संख्या होती है एक दिन की, और वो बढ़ के और 40,000-50,000-60,000-70,000 तक पहुंच जाएगी। इतने संकल्प तेजी से चलेंगे, क्या होगा उसके परिवार का, कैसे होगा, अभी तो छोटे बच्चे हैं, आदि आदि जो भी उससे लिंक्ड है। तो क्वांटिटी ऑफ थॉट से आप ये देख सकते हैं कि मेरा संकल्पों के ऊपर नियंत्रण है। अगर विपरीत परिस्थिति आई तभी भी हमारे संकल्पों की गति बहुत तीव्र ना हो, अगर तीव्र होती है तो उसमें दूसरा फैक्टर है, फिर एक है क्वांटिटी ऑफ थॉट, दूसरा है क्वालिटी ऑफ थॉट्स, विचारों की गुणवत्ता। तो क्वांटिटी जो होती है, विचारों की संख्या जो होती है, वो क्वालिटी से मतलब इंग्लिश में तो बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि क्वांटिटी अगर ज्यादा होगी तो क्वालिटी कम होगी, और क्वांटिटी कम होगी तो क्वालिटी ज्यादा होगी। तो जब क्वांटिटी अगर ज्यादा हो रही है, आप देख रहे हैं, तो अपने विचारों की क्वालिटी को हम बढ़ाएं, और उसी का नाम हम लोग मेडिटेशन, योग, विचारों पर नियंत्रण ये कह देते हैं। तो क्वालिटी ऑफ थॉट जैसी बढ़ी कि भाई मैं आत्मा हूं, ये शरीर नहीं हूं, उनके साथ मेरा इतना ही संबंध है, इतने तक कई पार्ट है, मेरा कर्तव्य है कि पूरी संभाल करना, पूरा उनको मदद करना, लेकिन अगर कुछ होता है ड्रामा अनुसार तो उसमें मुझे साक्षी होकर के रहना है, आदि आदि। तो क्वालिटी ऑफ थॉट्स हम जितनी बढ़ाएंगे तो देखेंगे आप क्वांटिटी ऑफ थॉट अपने आप कम हो जाएगी। तो उससे क्या है कि हम ओरिजिनल स्टेज में आ जाएंगे। तो क्वांटिटी ऑफ थॉट को कम करने का तरीका क्वालिटी ऑफ थॉट्स, और तीसरी चीज है डायरेक्शन ऑफ थॉट्स, यानी विचारों की दिशा। तो विचारों की दिशा निर्धारित करती है कि हमारी दशा कैसी है, हम किस स्थिति में हैं। और बचपन में हम सब ने वो एक खेल किया होगा ना, सूरज के सामने एक कांच है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, उसको रखते हैं तो सारी सूर्य की किरणें कन्वर्ज हो जाती हैं एक उसमें, और फिर वो जलने लगता है नीचे जो भी चीज होती है। यानी सूर्य वही है, नॉर्मल केस में वो बड़ा सुख दे रहा है हमें, मानो अच्छा है, लेकिन बस एक कन्वर्ज कर दिया तो इतनी ज्यादा हीट हो गई कि नीचे जो चीज है जल जाती है। तो बस ये मेडिटेशन है कि जैसे ही हम अपने विचारों को एक तरफ कन्वर्ज करते हैं तो उसमें पावर इतनी जनरेट हो जाती है, बहुत शक्ति जनरेट हो जाती है। तो ये जो है ना स्पेसिफिकली इसीलिए बैठकर योग करने का अभ्यास की भले चलते फिरते भी करते हैं लेकिन वो क्वालिटी ऑफ योग इतनी पावरफुल नहीं होती। अक्सर करके यज्ञ में एक उदाहरण देते हैं, हमारे विश्व किशोर दादा यज्ञ में शुरू से ही बाबा के लौकिक में भतीजे भी होते थे लेकिन बाबा समर्पित हुए बाबा के बाद कुछ दिन बाद वो भी समर्पित हो गए तो यज्ञ के मैनेजर की तरह काम करते थे। सब 90% तो बहने ही थी, छोटे बच्चे कुमारियां सब, तो वो जैसे कि संभाल करते थे एक बहुत अच्छी तरीके से। तो 1967 वगैरह की बात है कि उनको कोई तकलीफ हुई तो बॉम्बे भेजा गया तो ऑपरेशन वगैरह उनका हुआ। तो वहां से समाचार आता था, रमेश भाई समाचार देते थे बाबा दादा को बहुत तकलीफ, क्योंकि उन दिनों इतने पेन किलिंग मेडिसिन नहीं होते थे, बहुत दर्द होता था, नींद नहीं आती थी। तो बाबा को समाचार देते थे, फिर बाबा इधर से योग करते थे, दान करते थे शक्ति का, सकाश देते थे। तो फिर वहां से फोन आता था कि बाबा आज तो उन्होंने बहुत आराम किया, बहुत शक्ति, भले दर्द रहा होगा लेकिन कुछ महसूसता नहीं थी और तबीयत सुधरी। फिर इधर बाबा अपने काम में लग जाते थे और वो बिजी हो गए, फिर उधर उनको वो तकलीफ फिर शुरू हो जाती थी। तो ये सकाश जैसे कि पहुंच रहा है, हमें भी ये देखते रहना है अपने, उनका जो बाबा ने आज बोला ना प्रयोगी बनो, तो जब तक हम प्रयोगी नहीं बनेंगे तब तक हम उस चीज का आनंद नहीं उठा सकते। योग के भी प्रयोगी बनो, सबसे पहले तो अपने ऊपर प्रयोग करो। कैड के अंदर यही होता है, हमारा जो रूरल सर्विस विंग है तो उसमें भी यही है कि जो वही बीज को बोया जाता है लेकिन उसे पहले स्पिरिचुअली चार्ज किया जाता है, धरनी को भी चार्ज किया, वहां योग किया उसके बाद वो डाला। और हमने तो खुद देखा यहाँ पर कई बार लाते हैं तो नॉर्मल वे में कोई मानो लौकी इतनी बड़ी पैदा हुई तो जो हम लोग बनाते हैं वो बहुत बड़ी होती है और उसकी बात में उसके अंदर गुण बहुत होते हैं, फैट लेवल कम होता है, कार्बोहाइड्रेट अच्छा है, प्रोटीन लेवल अच्छा है, विटामिन लेवल अच्छा है, ये सब जो बढ़ने वाली चीजें होनी चाहिए वो सब बढ़ जाती है, ये लेबोरेटरी में टेस्ट हुए हैं। तो मन का प्रभाव कैसे प्रकृति पर भी पड़ता है तो चैतन्य मनुष्य पर नहीं पड़ेगा क्या? वो तो उसको स्वीकार करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये एक जो है जो प्रकृति का कि कैसे, और इसीलिए बाबा ने कहा है कि प्रकृति जो है ना, दादी को भी बोला था हमें याद है कि दिसंबर 31, 1999 जानकी दादी की तबीयत बहुत खराब थी, लोटस में थे, अहमदाबाद में लोटस मकान का नाम है, तो वहां पर दादी जी थे और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था सबने कि अब और कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी किसी भी मोमेंट हो सकता है, वेरी वेरी सीरियस कंडीशन। तो यहां पर दादी जी प्रकाशमणि दादी और निर्वैर भाई बाबा को समाचार सुना रहे थे, अव्यक्त बाबा आए हुए थे और बाबा को बता रहे थे बाबा दादी जानकी के लिए डॉक्टर ने ऐसा बोला है, बहुत बहुत सीरियस कंडीशन है। तो बस बाबा ने एक ही लाइन बोली थी, बच्ची उसे कुछ नहीं होगा, वो प्रकृति जीत आत्मा है, बस एक लाइन बोली। और देखो 1999 कहां और 2019 अब कहां, लगभग 20 साल हो गए और शायद अपनी उम्र की तो बात ही नहीं, हम लोगों से भी ज्यादा दादी वो सेवा करती है। तो प्रकृति, हम लोगों का भी लक्ष्य यही होना चाहिए कि मुझे भी प्रकृति जीत बनना है, और कुछ नहीं, मन जीते जगत जीत के साथ प्रकृति जीत बनना है। और जब जितना हम प्रकृति जीत बनते जाएंगे, और ये हमने देखा बाबा को, साकार बाबा भी कैसे अंत में प्रकृति जीत। 18 जनवरी को बाबा ने सुबह मुरली नहीं चलाई, सिर्फ योग कराया। उसके बाद बाबा ने यीशु दादी को बुलाया और कहा, बच्ची आज जितने भी पत्र हैं उन सब के जवाब लिखवा दो, कोई भी पत्र रह ना जाए, क्योंकि कोई भी पेंडिंग काम देख, जब आत्मा कर्मातीत अवस्था के निकट होती है ना, तो क्या है कि सारे काम कोई पेंडिंग पड़ा हुआ उसे समेट लेना चाहती है, क्योंकि अंत मते सो गति है। अगर अंत में कोई काम याद आया, कोई व्यक्ति याद आया, कोई वस्तु याद आई, कोई वैभव याद आया, तो अंत मते सो गति दुर्गति हो जाएगी। तो बाबा का एक तो ये देख रहे थे, बाबा समेटते जा रहे थे, और अंतिम दो दिन में तो यही देखा कि जो दो एक काम रह गए थे वो बाबा ने उस दिन अंतिम दिन समेट लिए। क्या काम रह गए थे? एक तो बाबा का पेंडिंग, हफ्ते में दो दिन बाबा जवाब देते थे पत्र के, तो शायद और भी ज्यादा दिन देते हो, लेकिन बाबा ने कहा बच्ची आज सारे लिखवा लो, सब लिखवा लिए। दूसरा जो म्यूजियम है नक्की लेक के पास, वो बिल्डिंग में प्रदर्शनी की थी और बात चल रही थी उस बिल्डिंग को ले लिया जाए, लेकिन तब हमारे पास इतने साधन नहीं थे यज्ञ में, इतना पैसा नहीं, तो पेंडिंग पड़ी थी फाइल, लेकिन उस दिन बाबा ने उस पर साइन करके इस फाइल को ले ली, इस बिल्डिंग को ले लिया जाए, यहाँ सेवा का साधन जहाँ आज म्यूजियम है। तीसरा, हमेशा रोज जो क्लास होती है ना, रोज क्लास होती है रात को 9:45 बजे, आपको याद है ना, यहाँ पर भी कल भी देखा होगा, रोज देखेंगे, लेकिन उस दिन बाबा ने शाम को 6:30-7 बजे ही कहा, बच्ची आज क्लास, आज बाबा 7 बजे क्लास कराएगा जल्दी, और सब बच्चों को बोलो भोजन करके आ जाए। तो देखो बाबा को पहले आभास हो गया था, जो आत्मा जितना कर्मातीत अवस्था के निकट होगी, प्रकृति जीत मन जीत होगी, उसको आभास हो जाएगा कि अब मेरा पार्ट इस शरीर में पूरा हुआ। तभी तो अंत मते सो गति के हिसाब से वो आत्मा अपनी इच्छा से शरीर छोड़ सकेगी। तो इसलिए बाबा ने सबको अनाउंस कर दिया, सब बच्चे भोजन वगैरह करके आ गए, और फिर बाबा भी आ गए, और बाबा ने मुरली पूरी चला दी है उस दिन। और जब ये अंतिम अवस्था होगी तो क्या होगा कि वैसे हमारे अंतिम पेपर हमारा ये शरीर का ही पेपर है, कर्म भोग का, बहुत 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 शरीर के अंदर व्याधि होगी, दर्द होगा, कष्ट होगा, लेकिन क्या जब अगर कर्म भोग के ऊपर हमारा योग बल संपूर्ण विजय प्राप्त कर लेगा तो क्या होगा, अंत समय में ये शरीर कोई भी हमें कष्ट नहीं देगा, पेपर नहीं देगा, और अंत का खेल बस कुछ मिनटों का ही होगा। जैसे बाबा के दे ना, अंत में आप देखो, वैसे बाबा को कफ आता था, मुरली थोड़ा खांसी आती थी कई बार, लेकिन उस अंतिम मुरली में उसकी आप सीडी लो, टेप लो, एक बार भी न बाबा को खांसी आई, न कफ के निकालने की जरूरत पड़ी, कुछ नहीं। वो इस बात का प्रतीक है कि जैसे कर्म भोग के ऊपर योग बल ने संपूर्ण विजय प्राप्त कर ली थी। उसके बाद बाबा ने ना मुरली चला के फिर बाबा, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है, कह के बाबा आए और बस हर बच्चे को, एक एक बच्चे को दृष्टि दी दरवाजे तक खड़े होकर, और बार बार बाबा की दृष्टि दादी प्रकाशमणी जी के ऊपर आके रुक जाती थी। बहुत ज्यादा समय तक बाबा उनको दृष्टि देते थे, फिर एक एक बच्चे को दृष्टि देते थे। उसके बाद क्या हुआ कि बाबा कमरे में गए, और कमरे में जा करके फिर बाबा ने एक दिन पहले मुरली में बोला था, बच्चे जब यहाँ आते हो तो छत पर चले जाओ, बेहद में चले जाओ, विचार सागर मंथन करो, यहाँ पर बहुत अच्छा वातावरण है। तो उस दिन तो जल्दी सब कुछ निबट गया था, भोजन भी हो गया था, रात्रि क्लास भी हो गई थी, तो हम छत पर ऊपर टहल रहे थे उधर, तो हमने देखा जमुना प्रसाद भाई यहाँ पर है, तो बड़ी तेजी से साइकिल पर एकदम चलाते हुए बाहर जा रहे हैं। तो हमने ऊपर से ही पूछा, रे अभी आप रात को इतने बजे कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि बस मैं बाहर जा रहा हूँ, दादी जी भेज रही हैं, बाबा की तबीयत शायद खराब है, तो डॉक्टर को बुलाने के लिए भेज रहे हैं, मैं डॉक्टर को बुलाने जा रहा हूँ। तो वो साइकिल पर वो गए और हमने भी सुना, हम भी नीचे आए और बाबा के कमरे की तरफ गए। तो बाबा का कमरा जो अभी है, पहले उतना छोटा ही होता था जहां तक बाबा का पलंग पड़ा हुआ है, ये तो बाद में एक्सटेंशन हुआ बच्चों के बैठने के लिए, लेकिन उतना ही छोटा सा बहुत, जहां बाबा का जो नीचे गद्दी रखी है और पलंग पड़ा है, बस उतना छोटा सा, कोई 8x8 का या 8x10 का ऐसा ही कमरा था। तो पीछे से उसका रास्ता अभी भी रास्ता है, तो हम उधर से गए तो देखा, बस हमें तो दिखाई पड़ा बाबा तो पूरा नहीं दिखाई पड़े जैसे बैठे हुए थे, दादी जैसे सामने खड़े थे, दादी की पीठ, और शायद बाबा अंत में उन्हें दृष्टि दे रहे थे, और जो पूरा विल जैसे होता है शक्ति, बस देते देते फिर बाबा ने जैसे शरीर से विदा ली। तो ये जो अंत का दृश्य और बाबा ने जब शरीर छोड़ा, उसके बाद बाबा का शरीर लगभग 65 घंटे तक रखा रहा। 18 की रात को शरीर छोड़ा, अर्ली नाइट, 18 की पूरी रात रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, और 21 को संस्कार किया गया, क्योंकि बड़ी दीदी टूर पर थी। और जब 21 पर संस्कार किया गया तो बाबा का शरीर वैसे ही चमकता हुआ, कोई इंजेक्शन नहीं दिया गया था, कोई लोशन नहीं लगाया गया था, लेकिन शरीर के अंदर बिल्कुल वैसा ही गोरा शरीर, कोई काला नहीं पड़ा, कोई डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ। तो ये है जैसे प्रकृति जीत का लक्षण। प्रकृति 5 तत्वों से बना हुआ, जितना अगर हमने मन जीते जगत जीत होगा, तो प्रकृति जीत अपने आप ही ये हो जाएंगे साथ साथ। तो ये प्रकृति को जीतने की बात तो बाद में आती है, सबसे पहली बात ये है मन की बात, मन जीते। तो बाबा का ये जो देखा ना इनके साथ साथ, तो बाबा का अंत तक भी यही पुरुषार्थ रहा, एकांत में बस बाबा चले जाते थे और हाथ पीछे रख के इधर यहाँ पर टहला करते थे। उस वक्त इतना चार्ज्ड वातावरण हो जाता था, कई बार यंग लोगों को तो आदत ही नहीं होती, हम लोगों को उस वक्त बहुत यंग एज में थे, लेकिन ऐसा चार्ज हो जाता था एटमॉस्फेयर कि बस नींद खुल जाती थी, बाहर आने की दिल होती थी, बाहर आए देखा तो बाबा टहल रहे हैं। और वो ये है जो वृत्ति के द्वारा हमारा, क्योंकि जब संकल्प की बात करते हैं तो संकल्प से भी सूक्ष्म चीज है वृत्ति, सबकॉन्शियस माइंड। एक है कॉन्शियस माइंड, ये सबकॉन्शियस माइंड, और इसीलिए वृत्ति से लेकर के ना पूरा ये सारा चीज है, जो आप सब तो पुराने हैं, जैसी हमारी वृत्ति स्मृति से शुरू होती है, स्मृति वैसी वृत्ति, जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी कृति कर्म, जैसे कृति वैसी प्रवृत्ति, जो है प्रवृत्ति हमारा डे टू डे लाइफ, अब जैसी प्रवृत्ति वैसी सृष्टि। तो सारा आधार हमारा ये वृत्ति के ऊपर है, जो अब चाहता है केवल संकल्पों तक ही हमारी विजय ना हो, संकल्प के साथ साथ हमारी वृत्ति भी इतनी सूक्ष्म हो। सबकॉन्शियस माइंड हमारा बहुत बहुत पावरफुल होता है। कॉन्शियस माइंड तो है, हम सब कॉन्शियस माइंड में अभी बैठे हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में अगर कोई बात चली जाती है वो 100% सिद्ध होती है। इसीलिए जो कमेंट्री होती है योग में ना, वो यही कहते हैं भाई मैं आत्मा हूँ, सूक्ष्म आत्मा, जो वो बात को धीरे 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 सबकॉन्शियस माइंड के अंदर डाला जाता है, अंदर बैठाया जाता है। तो ये हमें देखते चलना है, जो बाबा अभी चाहते हैं, और बाबा का हमने अंत तक देखा था कि ऐसी स्थिति ये प्रकृति। बस अंत में एक बात बता के हम खास उसे बताना कि प्रकृति के ऊपर फिर कैसे ये विजय वो करे इसमें। तो ये जो पांच तत्व है ना, एक तो ये कि रोज दादी से कई बार हम लोगों ने पूछा, जानकी दादी से, जब अभी तो दादी की तबीयत उतनी अच्छी नहीं रहती है, लेकिन 1999 के बाद 2000 वगैरह में तो दादी कहते थे मैं रोज प्रकृति के पांचों तत्वों को सामने एमर्ज करके उनको एक एक मिनट भी कम से कम हर प्रकृति के तत्वों को योगदान करती हूं, जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश, क्योंकि अगर ये प्रकृति का साथ नहीं रहा तो फायदा क्या हुआ। हमारी भी जो शरीर को सबको छोड़ना है, हम भी शरीर ऐसे छोड़े कैसे, किस तरीके से, जैसे शास्त्रों में किसका गायन है, भीष्म पितामह का इच्छा मृत्यु। तो जो ब्रह्मा बाबा का भी प्रत्यक्ष देखा, बाबा ने सबसे छुट्टी ली, विदाई ली, बाबा गए और अंत का खेल तो बाबा का देखा ही है। बाबा से एक बार जब भोग लग रहा था ना, तब बाबा से पूछा बच्चों ने, आपने 69 की मुटलियां पढ़ी होंगी, और 69 में भी 13 दिन तक जब भोग लगता था तो एक ये चौथे पांचवे दिन की शायद बात है, बाबा आपको अंतिम समय अनुभव कैसा हुआ जब आप शरीर छोड़ रहे थे, तो क्या अनुभव हुआ होगा। बाबा ने बताया कि बच्ची युद्ध चल रही थी एक तरफ, क्योंकि हार्ट में बहुत बहुत पेन था, दर्द हो रहा था, और जब दर्द हो रहा था दूसरी तरफ बस मैं बाबा को याद कर रहा था, शिव बाबा को, बाबा बाबा, और योग बल और ये जो है शरीर की भोगना है, बस इनकी युद्ध चल रही थी। पहले तो दर्द का भोग बल का ज्यादा पलड़ा भारी था, वो बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन धीरे 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 वो पलड़ा हल्का होता चला गया और योग बल का पलड़ा भारी होता चला गया, और उससे फिर आत्मा जैसे मक्खन से बाल की तरह निकल आए, अंतमते सो गति। ये तो शरीर, तो इसीलिए बाबा कई बार मुरली में बोलते हैं कौन सी डेथ सबसे अच्छी है, हार्ट अटैक की, थोड़ा बस अंत समय थोड़ी ही भोगना होती है कुछ मिनटों की, और बस उसके बाद तो आत्मा चली जाती है। तो एक ये तो प्रकृति जीत के लिए एक एक तत्व की एक बात बस ले ले, अंत समय में जो बाबा ने बताई है कि हम प्रकृति जीत अपनी इच्छा से शरीर छोड़े। अगर मानो बैठे हैं यहाँ पर और गर्डर गिर गया, छत गिरी, और अगर तब हमने शरीर छोड़ा तो हम में और दुनिया वालों में अंतर ही क्या रहा। फिर तो जैसे सारे हम लोग मरते हैं, हम भी मर गए, शरीर छोड़ दिया, अंत मते सो गति तो होगी नहीं, पता नहीं अंत में कैसे चारों तरफ हाहाकार हो रहा है बहुत ज्यादा। तो इसीलिए उसमें बाबा ने कहा है आप बच्चों को मैं पहले आभास करा देता हूं। तो जब ये है ऐसा कि एक एक तत्व का, मानो जल तत्व है, जल तत्व बहुतों की मृत्यु का कारण बनेगा, सुनामी आएगी, फ्लड आएगा, क्लाउड बर्स्ट होगा, बादल फटेंगे, बहुतों की मृत्यु होगी, लेकिन जल हमारी मृत्यु का कारण न बने तो क्या करना पड़ेगा, जल जैसे गुण धारण करने पड़ेंगे। बहुत गुण है जल के आप सोचोगे, लेकिन एक गुण जल का विशेष कौन सा है, शीतलता भी है, और सबसे बड़ा एडजस्टमेंट का गुण, फ्लेक्सिबिलिटी का गुण। देखो गिलास में ले लिया, गिलास की तरह शेप ले ली, कटोरी में लोगे कटोरी जैसी हो जाएगी। ऐसे ही हमारा सबका संस्कार ऐसा बन जाए हम सृष्टि की हर आत्मा के साथ एडजस्ट होके चल सके। तो अगर हम सबके साथ एडजस्ट होके चल सकते हैं तो जल कभी भी हमारे दुख का मृत्यु का कारण नहीं, जितनी भी सुनामी आएगी वहां तक आके रह जाएगी। बाबा ने बताया है अर्थक्वेक भी होगा, विनाश कुछ भी, लेकिन आपका बाल बांका नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जैसे हमने तो उस तत्व से मित्रता कर ली, और जल तत्व हमें एकदम बस वार्निंग दे देगा और ऑटोमेटिकली हमारे पांव वहां बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी, ऑटोमेटिकली, सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही पृथ्वी तत्व की क्या विशेषता है, सहनशीलता भी है, पृथ्वी की तत्व की है दाता, पृथ्वी देती है। देखो उससे सब्जी होती है, अनाज होता है, फल फ्रूट सब कुछ, पेट्रोल सब कुछ धरती देती है, दाता है। ऐसे अगर हम भी ये संस्कार धारण कर लेते हैं कि मेरे सम्मुख जो आए खाली हाथ न जाए, बस शुभ भावना, शुभकामना, सहयोग, उसके प्रति सद्भावना, ऐसे जिसमें कोई खर्च भी नहीं होता। तो इस कारण से अगर ये हमारे लक्ष्य रहा तो जितने भी अर्थक्वेक आएंगे, जितना भी विनाश का कारण बने, लेकिन धरती ही पहली वार्निंग दे देगी। और जो हार्मनी विद नेचर जिनकी होती है, तो ऐसे पशु पक्षी कई होते हैं, छिपकली होती है, मेंढक होते हैं, सांप होते हैं, जो जमीन के अंदर भी बिल बना के रहते हैं, तो क्यों दे आर मोर इन हार्मनी विद नेचर, उन सबको आभास हो जाता है कि एक वो ही है जिनको आभास हो जाता है कब अर्थक्वेक आने वाला है, और वो तुरंत बिल से निकल के चले जाते हैं। तो इस तरीके से अगर धरती का दातापन का गुण, पृथ्वी का ये पानी का एडजस्टमेंट का, वायु का कौन सा गुण है, हल्का, वायु हर चीज को ऊपर उठाती है, धरती हर चीज को नीचे खींचती है, विपरीत स्वभाव के हैं लेकिन सह अस्तित्व है, साथ साथ रहते हैं। ऐसे परिवार में भी, फैमिली में भी विपरीत स्वभाव के सब होंगे, सब अलग अलग स्वभाव के, लेकिन हमें को एग्जिस्ट करना है, साथ साथ रह करके चलना है। तो उससे क्या होगा कि अगर वायु का हल्केपन का गुण धारण कर लिया, इससे भाव क्या है, कभी भी जीवन में हम भारी ना, निराश ना, कोई भी विपरीत चीज आ जाए बस उसको देख करके हम तो सदा हल्के होकर उड़ते रहे, उड़ते रहो और उड़ाते रहो। तो उससे क्या होगा, जितने भी साइक्लोन आएंगे अंत समय में, ये पांच तत्वों में हवा भी एक कारण बनेगी, बहुत साइक्लोन आएंगे, बहुत ज्यादा विनाशकारी, 150, 200, 250, 300 की रफ्तार से हवा चलेगी, सब विनाश के लिए, लेकिन हमारे विनाश का कारण नहीं हो सकती। उस तत्व को हमें ऐसा, हर तत्व का एक एक गुण धारण कर लें। आकाश का कौन सा गुण है, विशालता, ऐसी हमारा भी हृदय इतना विशाल हो, किसी की कमी कमजोरी को हम अपने अंदर न रखें, सबको जैसे कि माफ करते रहे, क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें हार नहीं, क्षमा वीरों का भूषण है, कायर का व्यवहार नहीं। जो कायर होगा वो क्षमा नहीं कर पाएगा, जो वीर होगा, महावीर होगा, वो क्षमा कर लेगा। तो इसलिए वो एक हमें देखते, अपने को चेक करना है कि किसी के प्रति भी मेरे मन में वो ना हो। और अंतिम कौन सा है, अग्नि। अग्नि का स्वरूप क्या है, प्रकृति में सूर्य। तो बस ये जो अग्नि का, अग्नि हर चीज का रूप बदल देती है, तो ऐसे ही हमें देखना है कि अग्नि का रूप जैसे सब चीज का, हमें अग्नि स्वरूप धारण कर रहा है। वॉल्केनिक योग, जो ज्वालामुखी योग बाबा कहते हैं ना, तो उससे क्या होगा, हर चीज का रूप बदल जाएगा। बाबा ने कहा रोती हुई आत्मा आएगी, आपका स्वरूप देखेगी, अग्नि स्वरूप, हंसती हुई उसका रूप बदल जाएगा, रोने का, हंसती हुई चली जाएगी। अशांत आत्मा आए, शांति की स्थिति में लहराती हुई चली जाए। उनका रूप बदलने की क्षमता हमें यही प्रदान करता है वॉल्केनिक योग। चलो तो अभी इन तत्वों के साथ लक्ष्य रखें कि रोज हमें 5 मिनट, 1-1 मिनट प्रत्येक तत्व को योगदान करना है। अगर ये प्रकृति हमें अंत तक साथ देगी, शरीर, तो चाहे जितना भी विनाश की परिस्थितियां आएंगी, वो हमारे विनाश का कारण तो कम से कम नहीं बनेंगी। और प्रत्यक्ष यही देखा, इसीलिए आज हम सब लोग भट्टी में यही संकल्प लेके उठे कि मन जीते जगत जीत के साथ साथ मुझे प्रकृति जीत भी बनना है। और जितना जितना मन को जीता होगा उतना उतना, आज भी बाबा ने कहा ना सफलता मूरत, तो सफलता मूरत होके चले। ओम शांति, ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय भाई सबका जिन्होंने हमें मन जीते जगत जीत, कैसे जगत जीत बनना है, कैसे इस प्रकृति को भी अपना सहयोगी बनाना है, अपने आप को भी और इस प्रकृति को भी दोनों का सहयोग कैसे समन्वय होकर चल सकता है। बहुत सुंदर हमें विधि सुनाई, पुनः एक बार बहुत बहुत शुक्रिया।